मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 31 मार्च 2016 है और आज के इस AFEIS.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और इसी क्रम में मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन चार नौजवान साथियों का भी, जिन्होंने एकेडमी की सितंबर अक्टूबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं सुषमा सुमन, आप न्यू दिल्ली से हैं, रामू सिंह गौर, आप मथुरा उत्तर प्रदेश से हैं, जितेंद्र प्रजापति, आप कुशीनगर उत्तर प्रदेश से हैं, और अनूप कुमार सिंह, आप पटना बिहार से हैं। तो सुषमा, रामू, जितेंद्र और अनूप, आप चारों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, अब आज मार्च का आखिरी दिन है, कल 1 अप्रैल होगा, जिसे पता नहीं क्यों मूर्ख दिवस के नाम से मनाया जाता है, उसके बारे में हम लोग कल बातें करेंगे। लेकिन आज के लाइफ मैनेजमेंट में जो मैं बात आपसे शेयर करने जा रहा हूं, वो कहीं ना कहीं ज्ञान और मूर्खता उनसे संबंधित भी है। कुछ दिनों पहले एक मेरे बहुत प्यारे स्टूडेंट ने एक प्रश्न किया था और मैं उस स्टूडेंट या शिष्य कह लीजिए, ज्यादा अच्छा शब्द होगा, उनकी दुविधा को समझ सकता हूं। उनकी दुविधा सबसे बड़ी यह थी कि वो किसी को गुरु मानते हैं, बहुत श्रद्धापूर्ण गुरु मानते हैं, उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित भी हैं, लेकिन उनकी दिक्कत यह है कि जिन्हें वो गुरु मानते हैं वो हमेशा एक बात लगातार उनसे कहते हैं, सभी से कहते हैं, और वो ये कि देखो, मेरे ही बात पर विश्वास मत करो, मेरी बात को जांचो और परखो और फिर अपने ढंग से उसे लो, मुझ पर ही विश्वास मत करो। इससे उनके दिमाग में एक द्वंद्व की स्थिति बन गई है। द्वंद्व इस मायने में कि एक परंपरा या एक वर्ग ऐसा भी है जो शिष्य से ये कहते हैं कि गुरु पर कभी भी डाउट मत करो, कोई संदेह मत करो, उनके जो शब्द हैं उन शब्दों को ब्रह्म वाक्य की तरह लो और बिना सोचे विचारे वो जो कुछ भी कह रहे हैं उसका आचरण करो, उस पर चलो, दैट्स ऑल। दूसरा वर्ग जिसको लेकर के वे द्वंद्व में है, वो कहता है कि मेरी ही बात पर विश्वास मत करो। मित्र, भारत में ये दोनों ही परंपराएं चली हैं। अगर आप ब्राह्मण की परंपरा पर, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण ग्रंथ की परंपरा पर जाएं, यदि आप कर्मकांड वाली परंपरा पर जाएं, तब वहां आप देखेंगे, जिसे आप भागवत की परंपरा कह सकते हैं, तो वहां पूरी तरह से समर्पण की बात कही गई है। वहां जो गुरु है वो बिल्कुल ब्रह्मा के समान है और उसकी बात पर संदेह करना एक तरीके से ईश्वर की बात पर संदेह करना है, ठीक वैसे जैसे कि आप ईश्वर पर बिना किसी संदेह किए उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। ये एक परंपरा है। लेकिन दूसरी परंपरा हमारे पास और भी है मित्रों, जो वेदों में थोड़े से समय तक रही और इसके बाद वो बुरी तरह से खंडित हो गई, लेकिन गौतम बुद्ध और जैन धर्म ने फिर इसे रिवाइव किया, जिसे हम अवैदिक परंपरा की विचारधारा मानते हैं। और न केवल गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने ही इसे आगे बढ़ाया, बल्कि आप देखेंगे कि इन्हीं के समय में गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जिस युग में भारत में हुए हैं, उसी युग में बिहार और उत्तर प्रदेश का वो एक छोटा सा हिस्सा ही है जिसमें लगभग 70 से अधिक अवैदिक परंपराएं या अवैदिक विचार पद्धतियां चालू थी, जारी थी, उनका प्रचार प्रसार हो रहा था। यह बात अलग है कि आज उतनी प्रोमिनेंटली वो नहीं है कि हम उन्हें जानते हो, लेकिन उनमें से कुछ को हम जानते हैं क्योंकि वो हमारी फिलॉसफी के एक माइलस्टोन है और वे हमें पढ़ाए भी जाते हैं। जैसे कुछ के मैं आपको नाम बताना चाहूंगा, मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, साख्य परंपरा या पूरी के पूरी उपनिषद की जो परंपरा है जिसे हम वेदांत भी कहते हैं, वो पूरी की पूरी परंपरा तर्क पर आधारित परंपरा है, भावना पर आधारित परंपरा नहीं है। तो मित्रों, ये दोनों ही परंपराएं हमारे अपने ही देश, अपनी ही धरती, अपने ही एनवायरमेंट से उपजी हुई परंपराएं हैं। सवाल यह है कि इनमें से कौन सही है और कौन गलत है। दोस्तों, जब हम सही और गलत का निर्धारण करने बैठते हैं तो मुझे कभी कभी तो सच में यह लगता है कि एक तरफा डिसीजन देना बहुत मुश्किल होता है कि यही सही है और यह पूरी तरह से गलत है। मुझे लगता है कि एक चीज जो एक व्यक्ति के लिए सही हो सकती है, हो सकता है कि वही चीज दूसरे व्यक्ति के लिए गलत हो जाए, या दूसरे के लिए गलत हो वो पहले के लिए सही हो। तो सही क्या है? सच पूछे तो सत्य के बारे में मेरी अपनी जो धारणा है वो यह है कि सत्य बहुत सापेक्ष चीज है, एक सापेक्ष तथ्य है। रिलेटिव टर्म्स में ही हम सत्य की सही मायने में व्याख्या कर सकते हैं। ये तो हुई इसकी एक दार्शनिक व्याख्या। लेकिन मैं जो स्टूडेंट हैं उनका जो द्वंद है उसे व्यावहारिक स्तर पर थोड़ा सा हल करने की कोशिश करूंगा। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है विश्वास और दूसरा होता है अंधविश्वास। अगर यह कहा जाता है कि आप गुरु के कहे हुए पर विश्वास कीजिए और उसके बारे में कुछ भी मत सोचिए, तो सच मायने में धीरे धीरे यही विश्वास आपको अंधविश्वास की तरफ ले जाएगा। क्योंकि गुरु अभी जो बात भी आपसे कह रहा है वो अपने समय के सापेक्ष में कह रहा है, और हो सकता है कि समय के साथ साथ वह आपके सापेक्ष में भी हो। जरूरी नहीं कि वो सभी समय के लिए है और सभी लोगों के लिए है, हम इन बातों को नहीं जानते। ये बात अलग है कि कुछ बड़े सार्वभौमिक सत्य होते हैं जिनको हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, हर समय वो सच होते हैं और हर देश और काल में सच होते हैं, और इसी आधार पर धर्म के कुछ मूल तत्व बने हुए हैं, हमारे आचरण और व्यवहार के कुछ मूल तत्व बने हुए हैं, जैसे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये सार्वभौमिक सत्य हैं, सार्वकालिक सत्य हैं, ये हर युग में रहे हैं, आज भी हैं, हर देश में हैं, भारत में भी हैं और अमेरिका में भी है। पालन कितना किया जा रहा है वो बात अलग है। लेकिन जो दूसरे तथ्य होते हैं वो हर के लिए एक जैसे नहीं होते। मित्रों, जहां तक मैं समझता हूं कि एक जो गुरु का काम है, जो सही मायने में जो गुरु होगा, उसमें इतनी ताकत और इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वह अपने शिष्य को अपनी बातों को खंडित करने का अधिकार दे। क्योंकि जो गुरु है वो उस परंपरा को आगे बढ़ाने वाला है, उसे अंध परंपरा में बदलने वाला नहीं है। गुरु अंधकार को दूर करने वाला, इसका सामान्य अर्थ होता है वह जो अंधकार को दूर करे। और अंधकार को दूर करने का मतलब क्या है? अंधकार को दूर करने का मतलब है कि जो आपकी चेतना को प्रकाशवान बना दे, आपके अंदर की निराशा को, आपके अंदर की जड़ता को, गतिहीनता को, तो उसमें तोड़ फोड़ मचाकर उसे गतिशील कर दे, उसे ऊर्जावान बना दे, और आपकी चेतना इतनी प्रचंड हो जाए, इतनी प्रबल हो जाए, इतनी ऊर्जस्वित हो जाए, इतना प्रकाशवान हो जाए कि उसमें चीजों को देखने की नई दृष्टि पैदा हो, वो चीजों को और भी आगे तक देख सके, और भी नए संदर्भों में देख सके, और बड़े तार्किक ढंग से उसे देख सके और दूसरों को समझा भी सके। इस बारे में मैं अक्सर गौतम बुद्ध जी का जो एक उदाहरण है, जो वाक्य है, वो अक्सर प्रस्तुत करता हूं। मित्रों, गौतम बुद्ध इस मायने में बहुत ही एक अद्भुत विचारक हिंदुस्तान के सामने रहे हैं, और हिंदुस्तान को इस बात का बहुत बड़ा गर्व है कि उसकी संस्कृति ने, भले ही आज से 2500 साल पहले ही उन्हें क्यों न पैदा किया हो, लेकिन उनकी संस्कृति ने, भारत की संस्कृति ने गौतम बुद्ध जैसा एक प्रखर और सामाजिक विचारक दिया। उनके जो सबसे क्लोजेस्ट, जो सबसे घनिष्ठ मित्र थे, सबसे प्रिय मित्र थे, उनका नाम आप सब जानते हैं, उनका नाम था आनंद, और उनके चचेरे भाई भी थे। जब गौतम बुद्ध अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे, उस समय कहा जाता है कि जो गौतम बुद्ध का सिर था वो आनंद की गोद में ही था। उस समय आनंद बार बार गौतम बुद्ध से अनुरोध करते हैं कि आपका अंतिम संदेश क्या है, आप अंतिम शिक्षा आपका क्या है, मुझे दीजिए। गौतम बुद्ध मौन रहते हैं, लेकिन अंतिम शब्द उनके मुंह से फूटते हैं और वो है, अपो दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो। ये उनके कहा जाता है कि जीवन के अंतिम शब्द थे, जिन्हें अंतिम संदेश के रूप में माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये अपना दीपक खुद बनो, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ कुल मिलाकर के ये है कि तुम्हारे अंदर एक दीपक है, मैंने जला दिया है, अब रास्ता खुद तलाश करो। मेरा काम केवल दीपक को जलाने का है, और दीपक को जलाने का मतलब है कि मैंने तुम्हारे हाथ में एक टार्च पकड़ा दी है, या जो दिया बाती और तेल तुम्हारे अंदर था, वो जब तक उसमें तिली न दिखाई जाए वो जलता नहीं, तो मैंने उसमें तिली दिखा दी है। तो अब तुम अंदर से प्रकाशमान हो, अब उस प्रकाश में तुम खुद अपने लिए रास्ता तलाशो। क्योंकि ये गौतम बुद्ध के विचारों के केंद्र में ही था कि एक ही सत्य सबके लिए एक सही नहीं हो सकता। भाषा के बारे में भी वही बात कहते थे कि एक मैं अगर वाक्य कहूंगा तो जरूरी नहीं कि उसके अर्थ सबके लिए एक ही हो। जैसे कि वो कहा करते थे कि जैसे संध्या, जहां वो प्रवचन करते थे बुद्ध, तो संध्या का समय हो जाता था, सूर्यास्त के बाद वो सभी से कहते थे कि अब संध्या हो गई है, आप सब अब संध्या का अपना अंतिम कार्य करें। अब अंतिम कार्य करें का क्या मतलब है? वहां जो गाय और बैल बकरियां चराने वाले जो चरवाहे होते थे, उनके लिए उसका संदेश होता था कि अब आप अपने इन जानवरों को समेट करके गांव की ओर लौट जाओ। जो पूजा पाठ करने वाले लोग होते थे, उनके लिए उसी शब्द का अर्थ हो जाता था कि अब आप सब संध्या आरती के लिए हाथ मुंह धो करके मंदिरों में जाइए। गृहिणियों के लिए उसी का आदेश हो जाता था, उसी शब्द का अर्थ हो जाता था कि आप घर में जाकर रात्रि भोजन की तैयारी कीजिए। ये गौतम बुद्ध के संदेश की या विचारों की सबसे बड़ी प्रखरता थी। तो यदि आप गुरु के बातों पर इस तरीके से संदेह कर रहे हैं कि उस पर विचार कर रहे हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं कि आप गुरु पर अविश्वास कर रहे हैं, कतई नहीं। अविश्वास बिल्कुल अलग है, संदेह बिल्कुल अलग है, और तर्क करना बिल्कुल ही अलग बात होती है। मित्रों, बिल्कुल दोनों को एक लेकर के मत चलिए। मुझे लगता है कि किसी भी एक सच्चे गुरु की जीत उस दिन होती है जिस दिन वह अपने शिष्य से पराजित होता है। उस दिन उसे लगता है कि हां, मैंने एक अपने से बेहतर शिष्य तैयार कर दिया, और वही उसका सबसे बड़ा नोबल पुरस्कार होता है। तो ऐसा गुरु जो अपने शिष्य से पराजित होना चाहता है, आप सोच कर देखिए कि वो कभी भी ये अपने शिष्य को अपने विश्वासों का अंधा अनुगामी नहीं बनाएगा कि तुम मेरे ही बातों पर चलो। हां, परखो, जांचो परखो, और जांचने परखने के बाद अगर तुमको ठीक लगता है तो फिर चलो। उसका मतलब यह भी नहीं है कि मेरी सारी बातों को रिजेक्ट करो, लेकिन उसको जांचो और परखो कि ये बात तुम्हारे लिए सही है या नहीं, और कितनी सही है और कितनी गलत है। हां, उसके ऊपर तर्क वितर्क करो, और तर्क वितर्क करने के बाद यदि तुम विजयी होते हो तो फिर उसे स्वीकार करो, और यदि पराजित होते हो तो पूरे विनम्र भाव से उसे भी स्वीकार करो कि हां, मैं गलती पर था, मुझे ये सुधार करनी है, और उसे अपने आचरण में ले आओ। लेकिन जो कुछ भी करो, बहुत अच्छे तरीके से सोच विचार कर करो। और मित्रों, इसी बात को मैं अलग अलग तरीके से, मैंने इमोशंस और लॉजिक पर बहुत लंबे समय तक इसी डेली ऑडियो के लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से में चर्चा की थी। वो हो सकता है कि आप लोगों में से काफी स्टूडेंट्स ने, काफी प्रिय श्रोताओं ने उसे सुना भी हो। लगभग लगभग वही बात मैं यहां भी कह रहा हूं। तो मित्रों, मैं समझता हूं कि वो स्टूडेंट, वो शिष्य जो इस बात को लेकर के द्वंद में थे, शायद अब द्वंद मुक्ति का उनको रास्ता मिल गया होगा। याद रखिए कि गुरु के कहे हुए वचनों को तर्क वितर्क की कसौटी पर कसना कभी भी गुरु पर अविश्वास करना नहीं होता है, बल्कि सच मानिए तो वही गुरु का सच्चा संदेश होता है। क्योंकि जब आप उसे तर्क वितर्क पर, तर्क की कसौटी पर कसकर स्वीकार करेंगे, तब आप देखेंगे कि उसका जो स्वीकार्य की जो शक्ति होगी वो बहुत ज्यादा ताकतवर होगी, और तभी वो आपके आचरण में आ भी पाएगी, अदरवाइज फिर वो आचरण में आएगी भी नहीं। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज के ऊपर। तो कल की AIR न्यूज की जो हमारी हेडलाइंस हैं, मैं चार हेडलाइंस आपको बता देता हूं। पहली हेडलाइंस तो उत्तराखंड के उच्च न्यायालय का जो फिर से निर्णय आया है उस पर है। दूसरी जो हेडलाइंस है, ब्रुसेल्स में हमारे प्रधानमंत्री जी जो गए हुए हैं वो है। और तीसरी हेडलाइंस है कि हमारे जो गृह मंत्री जी हैं उन्होंने पठानकोट के मामले में जो की जांच के मामले में जो पाकिस्तान का जांच दल आया है उनका स्टेटमेंट है। और जो चौथी हेडलाइन है वो सुगम योजना को लेकर के है। तो मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा इन चारों हेडलाइंस पर करूंगा। फ्रेंड्स, उत्तराखंड में जो राजनीतिक संकट चल रहा है वो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि सरकार बनाने की असमंजस की स्थिति के कारण, बहुमत न होने के कारण ऐसा लग रहा था। फिर वहां वेस्टिंग ऑपरेशन के कारण ये के माध्यम से ये पता लगा कि विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, तो वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। और उससे पहले वहां जो विनियोग विधेयक था उसे भी ध्वनिमत से पारित कराया गया था, जबकि उसके लिए मतदान की मांग की जा रही थी। तो ये कुछ ऐसे संकट थे जिनकी वजह से वहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया। और इसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी वहां के उच्च न्यायालय में गई और उच्च न्यायालय ने फिर ये कहा कि वहां 31 मार्च को विधानसभा में ही इस बात का फैसला होगा कि सरकार का बहुमत है या नहीं है। फिर उसके खिलाफ फिर उच्च न्यायालय में दूसरी पार्टी गई और उनका इसके बाद उसी उच्च न्यायालय ने इसी मामले को 2 सदस्यीय पीठ को दे दिया। पहले जो ये फैसला किया था उसी उच्च न्यायालय के एक जज ने किया था, इसके बाद उसे 2 सदस्यीय बना दिया गया कि इस पर अब 2 जज अपने विचार इस पर विचार करें। फिर दोनों जज न्यायमूर्ति ने जो विचार किया है उसके आधार पर अब शक्ति परीक्षण की डेट टल गई है। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो ये कि इस मामले में राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया है और वहां का पूरा एक राजनीतिक माहौल है उसमें बहुत से कानूनी मुद्दों पर विचार करना जरूरी है, इसलिए इस पर जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। और उन्होंने अभी शक्ति परीक्षण को रोक दिया है। 6 अप्रैल को इस पर फिर आगे वो देखते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय उस पर क्या आगे कहती है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो उसमें उन्होंने एक कही है वो है कि वहां राष्ट्रपति शासन अभी लागू रहेगा, मतलब वो जो स्टेटस को है वो बना रहेगा। मित्रों, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि कल मैंने आप लोगों से चर्चा की थी कि अभी तक जो राष्ट्रपति शासन लगाए जाते थे उसमें कानूनी उलझने उतनी नहीं थी जितनी कानूनी उलझने इस बार के राष्ट्रपति शासन में दिखाई दे रही है। और उसी के तहत अब उच्च न्यायालय ने अभी ये बात कही है। मैं आप लोगों से ये भी कह चुका हूं कि ये जो पूरा का पूरा राजनीतिक परिदृश्य है उत्तराखंड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट राजनीतिक परिदृश्य है कि संविधान किस तरह से इंप्लीमेंट होता है, संविधान की किस तरह से व्याख्याएं होती हैं, राजनीतिक दल उन संविधानों को किस तरीके से अपने अपने हित में उपयोग करना चाहते हैं, फिर न्यायालय किस तरीके से उन्हें सुलझाता है। इन सारे चीजों पर आप बहुत बारीकी से नजर रखिए। आप देखेंगे कि पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल जो एक सिनेरियो होता है वो आपकी पकड़ में धीरे धीरे आता चला जाएगा। मित्रों, मैं एक बार फिर से आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, कभी कभी बीच बीच में मैंने ये बात कही है और मैं अक्सर मौका मिलने पर दोहराता भी हूं कि जो आपका जनरल स्टडीज का सेकेंड पेपर है, मेंस एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर नहीं है, वो पॉलिटिकल साइंस का भी पेपर नहीं है, वो पॉलिटी का पेपर है। पॉलिटी का मतलब यह हुआ कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी है, उसमें पॉलिटिकल साइंस भी है जो बहुत थोड़ा सा है, और वो पूरा का पूरा हमारे देश का जो राजनीतिक परिदृश्य है, मतलब उसका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है कि हमारे जो संविधान है ये संविधान इम्प्लीमेंट जो हो रहा है वो पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए हो रहा है। तो पॉलिटिकल पार्टीज उसे कैसे इंप्लीमेंट कर रही हैं, या इसे दूसरे रूप में कह लें कि फिर हमारे देश का एक राजनीतिक परिदृश्य क्या है, इस पर आधारित है वो पेपर। और इसी नजरिए से आपको उस पेपर को देखना चाहिए। अगर आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की किताब पर या पॉलिटिकल साइंस की किताब पर निर्भर रहेंगे तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी, और ज्यादा अच्छा होगा कि आप मेरी बात को ज्यों का त्यों स्वीकार करने की बजाय आप पिछले 3 साल के अनसॉल्व्ड पेपर उठा करके देखें, जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर का, तो शायद आपको इस बात पर काफी कुछ यकीन हो भी जाएगा। और साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में ले रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सेकेंड पेपर को उठा करके देखें पिछले 2-3 साल के, तो उन्हें वो देखेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी सेकेंड पेपर का बहुत सा हिस्सा इसी पॉलिटी से कवर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन से कवर नहीं होता, तो पॉलिटी से कवर होता है। मित्रों एक बात मैं और कहना चाहूंगा, कल मैं थोड़े से जल्दी जल्दी बोलने के मामले में थोड़े से संदेह में आ गया था कि कल मैंने आप लोगों से एंटी डिफेक्शन बिल के बारे में बात की थी कि जो दल बदल विरोधी जो कानून बना था 1985 में उसमें 1/3 की बात कही गई है कि अगर 1/3 या उससे अधिक लोग किसी पार्टी को छोड़ करके जाते हैं तो उनकी मान्यता बनी रहेगी, फिर चाहे वो दूसरी पार्टी बना लें या दूसरी पार्टी में अपने आप को मर्ज कर दें। तो 25% और 33% को लेकर के थोड़ा सा मेरे दिमाग में संदेह हो गया था, हालांकि मेरे झुकाव 33% की ओर ही था, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि उसमें फिर इस तरह के मैं समझता हूं कि थोड़ा सा मार्जिन देकर के उसे करेक्ट कर लेना ज्यादा सही होता है। फ्रेंड्स जो दूसरी खबर थी वो ब्रुसेल्स में हमारे प्रधानमंत्री जी गए हुए हैं और आपको मालूम है कि वहां जो भारतीय और यूरोपीय संघ परिसंघ की जो का जो सम्मेलन होना था उसमें प्रधानमंत्री गए हुए हैं, इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी बात भी की है। दो बातें मैं आज आपसे स्पेशली शेयर करना चाहूंगा। ये सिविल सर्विस के एग्जाम का प्रश्न तो नहीं बनता है लेकिन जो स्टेट सिविल सर्विसेज होती हैं या दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन उनके लिए एक महत्वपूर्ण एक प्रश्न बन सकता है कि ब्रुसेल्स में हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप एशिया के सबसे बड़े ऑप्टिकल टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है जो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है। सबसे बड़ी दूरबीन एशिया की, ये आपको आपकी जानकारी में होनी चाहिए, कभी कभी इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। फिर आपने ध्यान दिया होगा कि ब्रुसेल्स में बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री जी ने जिन बातों पर सबसे ज्यादा जोर दिया है, खासकर दो तरह के व्यापार ब्रुसेल हमारे बेल्जियम के साथ सबसे ज्यादा हो सकते हैं, एक तो हीरा के व्यापार के बारे में उन्होंने बात कही है और दूसरा समुद्री मार्ग के निर्माण के बारे में, जो बेल्जियम है वो भारत का काफी अच्छा पार्टनर हो सकता है। एक सामान्य तौर पर बस आपकी जानकारी के लिए है, जब हम कोई भी चीज इस तरह से सुन लेते हैं और सुनने के बाद उसे अंडरलाइन कर देते हैं तो दिमाग में वो थोड़े से ज्यादा वक्त तक के लिए बैठ जाता है। इसी संदर्भ में मैंने हीरा और समुद्री मार्ग में इन दो क्षेत्रों में जो बेल्जियम के साथ भारत के संबंध हो सकते हैं उस संभावना पर मैंने आपका ध्यान दिलाया है। एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा कि अगर आप मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो मॉडर्न इंडिया में जो हमारे जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो जब अपने महल बनवाते थे तो उस महल में अक्सर वो ग्लास कांच का सामान मंगवाया करते थे, झालर मंगवा रहे हैं और बड़े बड़े और भी कांच के ग्लास और बर्तन और इस तरह की चीजें, तो उसमें से आप देखेंगे कि बेल्जियम का नाम आता है। बेल्जियम इस मामले में बहुत आगे है, जो कांच का सामान जो ग्लास कट के लिए और ग्लास डिजाइनिंग के लिए बेल्जियम बहुत माहिर देश है, इसीलिए वो हीरा के साथ प्रधानमंत्री जी ने उसे जोड़ा है। एक जो खबर थी मित्रों वो पठानकोट में, आपको मालूम है कि पाकिस्तान का संयुक्त जांच दल आया हुआ है जिसको लेकर के एक तरीके से एक विवाद की स्थिति भी बनी हुई है, कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं। इस बारे में गृहमंत्री जी का जो बयान है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने पहली बार इस बात को एक्सेप्ट किया है कि पठानकोट में जो हमला हुआ था जो एयरबेस पर उसमें उसकी जो जड़ें हैं वो पाकिस्तान में हैं। चूंकि गृहमंत्री जी ने गृहमंत्री की हैसियत से ये बात कही है इसीलिए आप इसे भारतीय जनता पार्टी का सिंपली स्टेटमेंट मत लीजिएगा, है ना। ये एक जिम्मेदार गृहमंत्री के पद पर रहने वाले हमारे मंत्री का स्टेटमेंट है, वो भी होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, तो ये पूरी तरह से ऑथेंटिक है और इस मायने में ये जो स्टेटमेंट है बहुत बड़ा मायने रखता है कि पाकिस्तान अब इस बात को स्वीकार कर रहा है कि नहीं, भारत में जो आतंकवादी गतिविधियां, भले उन्होंने पठानकोट के बारे में यह बात कही है कि जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनका संचालन कहीं न कहीं पाकिस्तान से हो रहा है, यानी कि वो जो आतंकवादी जो गुट हैं इस तरह के संगठन हैं उनका कुछ न कुछ बेस पाकिस्तान में है, ये एक बहुत बड़ी स्वीकृति है। देखते हैं कि अब आगे ये क्या रूप लेता है, लेकिन अगर ये बात और आगे बढ़ी, जो बढ़ेगी ही, डिप्लोमेसी यही होती है। तो ऐसी स्थिति में ये भारत की ने जो ये कदम उठाया कि संयुक्त जांच दल को भारत आने की अनुमति दी पाकिस्तान की टीम को, बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय होगी, भारत के पक्ष में ये चीज बहुत अधिक जाएगी। मित्रों, एक छोटी सी खबर थी लेकिन सिविल सर्विस के लिहाज से ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत महत्वपूर्ण भी खबर है, वो है सुगम्य योजना पर। कल अगर आप लोगों ने टीवी पर भी चैनल्स में देखा हो, खासकर दूरदर्शन के चैनल्स पर, वो था कि जो दिव्यांग हैं उनके कल्याण के लिए सरकार ने योजनाएं बनाई हैं और उनका एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें हमारे वेंकैया नायडू जी गए हुए थे। तो सुगम्य योजना जो भारत सरकार ने शुरू की है, इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि योजना क्या है, किस तरीके की है, इससे क्या क्या लाभ होंगे, इसमें क्या क्या सीमाएं हैं। जो शब्द है उससे आप इस योजना के चरित्र को समझ सकते हैं। सु का मतलब होता है बेहतर और गम्य का मतलब है चलना, जो बेहतर तरीके से चल सके, सुगम्य, जो बहुत अच्छे से चल सके, आसानी से चल सके। तो ये एक तरह से जो दिव्यांग है उनसे जुड़ा हुआ है, यानी कि उनका जीवन बेहतर तरीके से चल सके, सुगम्य, उसको आसान बनाना, उनके जीवन को सरल बनाना, आसान बनाना, उन्हें चलने लायक बनाना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। इसको आप किसी भी तरीके से सुगम्य शब्द को जोड़ सकते हैं। तो ये सुगम्य योजना उनसे संबंधित है, इस पर आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों, न्यूज के बारे में इतना ही। अब मैं आता हूं न्यूज पेपर्स पर। न्यूज पेपर्स की जो मैं आज आपको क्लिपिंग्स प्रोवाइड करने जा रहा हूं, उसमें आपको चार क्लिपिंग्स केवल इस बात पर मिलेंगी कि भारत सरकार ने जो एफडीआई में 100% एफडीआई जो ई कॉमर्स के लिए जो अधिसूचना जारी की है उसके ऊपर लिखे गए हैं, जिसकी चर्चा मैंने कल अपने डेली ऑडियो में की थी। मित्रों, इसको लेकर के अब अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वो प्रतिक्रियाएं क्या हो सकती हैं, किस तरीके के हो सकती हैं, अब इस पर आपकी तैयारी का क्या ढांचा होना चाहिए, मैं इस पर आपसे थोड़ी सी बात करूंगा। अगर आप 2013 का पेपर उठा करके देखें, जो खुदरा व्यापार है, जिसको हम रिटेल मार्केट कहते हैं, रिटेल बिजनेस कहते हैं, ठीक इसी तरह से एफडीआई को लेकर के है जिसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इससे रिलेटेड जनरल स्टडीज के थर्ड पेपर में 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि उस समय यह बहुत हॉट इशू था कि सरकार खुदरा व्यापारी इस क्षेत्र रिटेल के क्षेत्र में एफडीआई अलाउ कर रही है या नहीं कर रही, करे या ना करे, अखबारों में बहुत कुछ आता था, तो स्वाभाविक है कि वो प्रश्न पूछा गया। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो ई कॉमर्स में 100% जो एफडीआई अलाउ किया गया है, इस पर सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जाएंगे ही तो कहना मूर्खता होगी, लेकिन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है। अब आपका जो प्रिपरेशन होगा, उस प्रिपरेशन का ढांचा क्या होगा? प्रिपरेशन का आपका ढांचा होगा मित्रों कि जो सरकार ने जो पहली बात की जो 100% जो एफडीआई अलाउ किया ई कॉमर्स में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज ई कॉमर्स, ये ई कॉमर्स है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आप किसको कहते हैं, स्नैपडील है, फ्लिपकार्ट है, amazon.com है, इन सब के बारे में आप लोग जानते हैं, तो थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये जानकारी होनी चाहिए कि फिर ये जो ई कॉमर्स है ये काम किस तरीके से करते हैं। मैं फोर्थ बैच के स्टूडेंट्स को याद दिलाना चाहूंगा कि मैंने ई कॉमर्स का बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण लेकर के उनको डिटेल में समझाया था कि ये जो संस्थाएं हैं स्नैपडील और अमेजॉन वगैरह, ये किस तरीके से काम करती हैं और किस तरीके से जो इनके काम करने का ढंग है वो जो दूसरे रिटेलर्स हैं, जो दूसरे दुकानदार हैं, उनकी तुलना में इनको बहुत ज्यादा मार्जिन वाला बना देती है, बहुत ज्यादा फायदे में ले आती हैं, क्योंकि इनके पास अपने जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी स्टोरेज हो, इनका सीधे कंपनी से कनेक्शन होता है और कंपनी से सामान चला जाता है, बहुत जरूरी नहीं है कि वो माल का अपने पास स्टोर रखे, तो इस तरह की बहुत बड़ी सुविधाएं होती हैं। और चूंकि इनके पास मार्केट बहुत बड़ा होता है, तो ये थोक के भाव में जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो कंपनीज हैं, जो प्रोडक्ट करने वाली हैं, उनसे सामान खरीदते हैं, तो इनको बहुत सस्ता भी मिलता है। फोर्थ बैच के स्टूडेंट्स को मैं याद दिलाऊंगा कि वो याद करें कि जो मैंने दाढ़ी बनाने के ब्लेड का उदाहरण उनको दिया था और सूट कपड़े का उदाहरण दिया था कि किस तरह से मार्केट में उसी के रेट कितने थे और जब ई कॉमर्स के जरिए वही चीजें मंगाई गई तो आधे रेट में मिल रही थी, उन उदाहरणों को याद करने की कोशिश कीजिए। तो पहला आपको मालूम होना चाहिए कि ई कॉमर्स क्या होता है, इसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि ये फंक्शन किस तरीके से करते हैं, तब आपको उसकी प्रैक्टिकलिटी समझ में आएगी। इसके बाद फिर थर्ड स्टेज आएगा, आपको मालूम होना चाहिए कि सरकार ने जो एफडीआई अभी अलाउ किया है उसके में क्या उसके शर्तें हैं। सरकार ने तीन शर्तें उसमें रखी हैं और वो तीनों शर्तों का उल्लेख आज के जो अखबार की मैं क्लिपिंग्स आपको दे रहा हूं, हिंदी की दो क्लिपिंग्स हैं और इंग्लिश की दो क्लिपिंग्स हैं, उसमें आपको पढ़ने पर आपको बड़े आराम से उसकी जानकारी मिल जाएगी कि सरकार ने उस पर क्या प्रतिबंध लगाए हुए हैं, क्या सीमाएं हैं। जब आप उन नीतियों को पढ़ेंगे तो अब उन नीतियों के बाद सीधे सीधे दो पक्ष आपको मिलेंगे और इसी से रिलेटेड आपको आर्टिकल्स भी पढ़ने को मिलेंगे। मित्रों, मैं जानबूझ करके इसके कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देखिए मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि मेरा जो उद्देश्य है इस डेली ऑडियो का या मैं जो 15 दिन की क्लासेज होती हैं उनका भी सिर्फ आप में कैपेसिटी पैदा करना है, आपको कैपेबल बनाना है कि आप अपनी तैयारी करने लायक खुद हो सकें, तैयारी कराना कतई नहीं है। इसलिए मैं ई कॉमर्स में जो 100% एफडीआई है उनके कंटेंट पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसके केवल स्ट्रक्चर पर बात कर रहा हूं कि आपके प्रिपरेशन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। राइट, पहले मैंने बताया कि व्हाट इज ई कॉमर्स, दूसरा ये कि हाउ डज दिस ई कॉमर्स कंपनी वर्क्स, किस तरीके से ये काम करती हैं, वो प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जो थर्ड स्टेज आएगी वो आएगी कि गवर्नमेंट ने अभी जो 100% एफडीआई अलाउ की है उसमें गवर्नमेंट ने क्या शर्तें रखी हैं, क्या नीतियां हैं, शर्तें भी न कहें तो क्या नीतियां हैं। अखबार के अभी क्लिपिंग्स में आप देखेंगे कि सरकार ने तीन इंपॉर्टेंट अपनी पॉलिसीज उसमें दे रखी है। राइट, अब ये नीतियां होंगी। अब आप देखिए कि अब आप इसको किन किन एंगल से एनालाइज करेंगे। फर्स्ट नंबर वन कि ये जो ई कॉमर्स जिसमें 100% एफडीआई हो गई है और फॉरेन के पास तो पैसों की कमी नहीं है, जब ये आ जाएंगी और काम करने लगेंगी तो हमारे जो रिटेलर्स हैं उनकी हालत क्या होगी, जो खुदरा दुकानदार हैं उनकी हालत क्या होगी। क्योंकि आप अखबारों में अक्सर पढ़ रहे हैं कि जो ई कॉमर्स है भारत में बहुत तेजी से बढ़ा, 20-25% एनुअली ग्रोथ है इसके बिजनेस का। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जो खुदरा व्यापारी हैं, लगभग हमारे यहां 2.5 करोड़ खुदरा व्यापारी हैं जो रिटेल में काम कर रहे हैं, एक व्यापारी से 5 व्यक्ति जुड़ा हुआ है, परिवार के सदस्य ले लें तो लगभग 12 से 15 करोड़ लोग का जो जीवन है, जो रोजगार है, वो आप कह लीजिए जीवन यापन का जो साधन है वो खुदरा व्यापार है। इसका क्या इंपैक्ट होगा, इसके पॉजिटिव्स क्या होंगे, यानी कि इस एफडीआई अलाउ करने के सकारात्मक प्रभाव क्या होंगे, दूसरे नकारात्मक प्रभाव क्या होंगे, दो पॉइंट। तीसरा पॉइंट मित्रों एक और भी आता है कि जब आप नीतियों के बारे में पढ़ेंगे, अभी तो मैं आपको पढ़ने के लिए कह रहा हूं, तो आपको एक चीज और मिलेगी कि गवर्नमेंट चाहती है कि एफडीआई वो ज्यादा से ज्यादा हमारे यहां आए। दूसरा वो ये गवर्नमेंट ये भी कहती है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये भी बात वो कहती है कि सरकार कम से कम हस्तक्षेप करेगी। लेकिन जो एफडीआई में सरकार ने जो नीतियां लागू की हैं उस वो एक तरीके से 1990 के पहले हमारा जो लाइसेंस राज्य था या कह लीजिए कुछ इंस्पेक्टर राज्य था या कानून और नियंत्रण के जरिए बिजनेस को कंट्रोल करने की जो नीति थी या मार्केट में कॉम्पिटिशन को अलाउ न करने की जो नीति थी, लगभग उसी से रिलेटेड वही चीजें दिखाई दे रही हैं। यानी कि हालांकि 100% एफडीआई को अलाउ करना एक तरह से लिबरलाइजेशन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने जो इसमें कुछ पॉइंट्स रखे हैं वो लिबरलाइजेशन के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। तो ऐसे में सरकार क्या वापस जा रही है 1990 की तरफ या सच्चाई क्या है, वह भी आपको तीसरा एक बिंदु तैयारी करने का उपलब्ध कराता है। तो मित्रों ये आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होगा। इस स्ट्रक्चर पर तैयारी करने के बाद आपको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं। जहां तक आपके अपने स्टैंड का सवाल है, मैं अभी कह सकता हूं कि इस पर अभी और भी चीजें आएंगी। आज जो बातें आज मैं आपको जो पेपर की क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं उसमें एक दो न्यूज आइटम्स हैं और कुछ एडिटोरियल कमेंट्स हैं, आर्टिकल फॉर्म में अभी नहीं है। आर्टिकल फॉर्म्स में भी इस पर आप देखेंगे कि जरूर आपको पढ़ने को चीजें मिलेंगी और तब फिर आपके सामने एक कंप्लीट व्यू होगा। इसलिए अभी आप अपना व्यू तैयार करने के जद्दोजहद में न पड़े, उसे अभी डेवलप होने दें, है ना, जल्दबाजी न करें। अभी इन पर चीजें आएंगी, मैं आपको अवेलेबल कराता रहूंगा, फिर आप अपना व्यू आप उस पर एस्टेब्लिश कीजिएगा। तो मित्रों, ये ई कॉमर्स के बारे में थी, और जो प्रेस क्लिपिंग्स हैं वो मैं नॉलेज सेंटर पर प्रोवाइड कर रहा हूं, आप उन्हें देख लेंगे। और मित्रों, अब अंतिम चरण है ईमेल का। तो बहुत से मेल हैं, सभी दोस्तों को, मेल लिखने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, आदर्श कुमार न्यू दिल्ली से, संदीप कुमार लखनऊ से, कलीम अहमद सवाई माधोपुर राजस्थान से, स्नेहा शीष भुवनेश्वर से, सोनाली कौशल ग्वालियर से, शेख आदिल, चंदन पांडे नवादा बिहार से, और पीयूष त्रिपाठी ग्वालियर से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज का ये डेली ऑडियो यहीं समाप्त होता है। इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।